श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 41। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एव वा तत्तद् देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्पुलिंग मात्र से उद्भूत है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को विभूति प्रदत्त देखते हैं, अर्थात उनमें विभिन्न प्रकार की कार्यों को बड़े अच्छे ढंग से करने को देखते हैं। तो यदि हम उनसे द्वेष करते हैं, अरे इसके पास शक्ति क्यों है, ये अधिक बुद्धिमान क्यों है, ये अधिक रूपवान क्यों है, या अधिक अच्छा कैसे गा सकता है, और कोई भी कारण कुछ भी है उसके पास है, कोई विभूति है, तो अगर हम उससे द्वेष करते हैं तो वो मूलतः द्वेष भगवान कृष्ण के प्रति है, क्योंकि वो शक्ति उनसे ही आ रही है। और अगर हरिनाम हम जब करते हैं तो अब ये प्रकट प्रभाव देखेंगे हरे कृष्ण मंत्र जब करने से, क्योंकि जो रूट हमारा जो जड़ है भगवान से द्वेष, जिसकी वजह से हम जगत में हैं, वो सही होने लगता है, वो खत्म होने लगता है। इस कारण से इस जगत में लोगों के प्रति या वस्तुओं के प्रति जो हमारा द्वेष है, ईर्ष्या की भावना है, मात्सर्यता है, ये चला जाता है। मात्सर्यता का अर्थ होता है पर उत्कर्ष और सहनम, दूसरे के उत्कर्ष को, उत्थान को, प्रगति को सहन नहीं कर पाना। और ईर्ष्या का अर्थ होता है शत्रु उत्कर्ष सहनम, कि जो शत्रु है उसका उत्कर्ष को सहन ना कर पाए। दोनों में अंतर तो आप समझ रहे होंगे। मत्सरता मतलब प्राय सभी के प्रति, और ईर्ष्या मतलब किसी शत्रु के प्रति। तो किसी को अपना शत्रु मानना, मित्र मानना, ये भी द्वेष के कारण है, और मूलभूत द्वेष है जीव का भगवान के प्रति। तो भगवान यह बता रहे हैं, इस बात को सुन करके भगवान से प्रीति बढ़ती है कि जगत में कोई भी वस्तु है, सूर्य है, चंद्रमा है, कोई तेजस्वी है, सबके स्रोत भगवान है, कितने महान है, कितने महान व्यक्ति की मैं पूजा कर रहा हूं। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है 1.1.1 में, सत्यम परम। भगवान सत्य हैं, यानी कि भगवान भूतकाल में भी रहते हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में। तो ये तो जीवात्माओं के संग भी है और भगवान के अन्य अवतारों के प्रति भी है, सत्य है, वो हमेशा रहते हैं। लेकिन इन सब की सत्यता भगवान के ऊपर आधारित रहती है। भगवान परम है, अर्थात भगवान की भगवत्ता किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, भगवान पूरी तरह से स्वराट है। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है जो श्लोक से हम समझ पा रहे हैं कि इस जगत की कोई भी विभूति भगवान पे आश्रित है, लेकिन भगवान अपनी शक्तियों के लिए किसी पे भी आश्रित नहीं है। आखिरी श्लोक, अथवा बहु न तेना किम ज्ञाते न तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेना स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। कल एक भक्त मुझसे कह रहे थे कि भगवान ये क्यों नहीं कहते हैं कि वही परमात्मा है। तो यहां आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भगवान अपने को परमात्मा के रूप में बता रहे हैं। वैसे तो 10वें अध्याय के पहले वाले श्लोक में, अहम आत्मा गुड़ा केशव वाले श्लोक में भी भगवान ने बताया था। यहां फिर भगवान इस बात को बता रहे हैं कि भगवान के अंश हैं परमात्मा, और परमात्मा के द्वारा इस पूरे जगत में व्याप्त होकर भगवान इस जगत को धारण किए हुए हैं, चला रहे हैं। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। अर्थात समझ लीजिए इसका अर्थ, परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह है और उन्हीं के कारण उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा मतलब वो देखते हैं, साक्षी हैं, और अनुमंता मतलब वो सैंक्शन करते हैं, आज्ञा देते हैं, ठीक है ये कार्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है कर दो उसको। तो भौतिक प्रकृति को भगवान परमात्मा के रूप में नियंत्रित कर रहे हैं और सभी जीवों को भी। भगवान यहां पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे यानी कि ये नहीं समझ में आना चाहिए कि सूर्य का तेज कहाँ से, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। वस्तुतः जितने भी साइंटिस्ट हैं वो
वो यही करना चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अगर आप विचार करें तो उनका मूलभूत उद्देश्य ये है कि वो जान लें कि वस्तु कैसे कार्य कर रही है और फिर उस वस्तु को वो नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं देखते, भक्त शक्ति को देखते हैं लेकिन उससे शक्तिमान भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं और मेरा अस्तित्व भी। जैसे देखिए मैं कुछ बोल रहा हूं तो बोलने से पहले सोच रहा हूं, तो सोचने की जो मेरे विचार हैं वो कैसे मेरी वाणी के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं मैं नहीं जानता, ये भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार की बात को जब हम सुनते हैं तब हमारे हृदय में नम्रता आती है। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भगवान की शक्ति से होता है, बाथरूम तक जा पा रहे हैं तो भगवान की शक्ति से होता है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम हर क्षण भगवान पर निर्भर हैं। तो जो व्यक्ति हर क्षण हमारा पालन कर रहे हैं क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? बहुत बार जब भक्ति नहीं करनी होती है तो ऐसा बहाना मारते हैं कि हम माता पिता की सेवा करेंगे कि माता पिता हमारा पालन कर रहे हैं, लेकिन माता पिता का पालन कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा अज्ञान है अगर कोई सोचे कि माता पिता पालन कर रहे हैं। माता पिता केवल निमित्त मात्र हैं, पालन करने वाले भगवान ही हैं। अन्न जो है वो माता पिता अपने देह से उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। इस जगत में कोई भी व्यक्ति एक पानी की बोतल लेके भी नहीं आता है, भगवान ही व्यवस्था करते हैं। तो हम भगवान पे आश्रित हैं ये स्वीकार करना चाहिए, यही जीव की स्थिति है। आश्रित तो हम हैं लेकिन बद आत्मा इसको स्वीकार नहीं करता है बल्कि भगवान से अलग रखे जीना चाहता है, यही उसकी उसकी बीमारी है। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अंश की पूजा करके अंशी यानी स्रोत की पूरी पूजा नहीं होती है। देवताओं की पूजा करने से भगवान की इनडायरेक्ट पूजा होती है तो लाभ भी इनडायरेक्ट मिलता है, मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो अगर भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है तो हमें सीधे भगवान कृष्ण की शरण लेनी होगी, सीधे भक्ति करनी होगी। ध्यान देना चाहिए जब ये बोला जा रहा है कि कृष्ण की ही पूजा करनी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं की असम्मान करना है। कृष्ण ही शरण्य है, कृष्ण देवताओं की भी शरण्य है। तो कृष्ण की शरण लेते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, शरण लेते हैं, सम्मान हम सबका करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम्मान हम सबका करते हैं क्योंकि देवता भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, लेकिन शरण हम भगवान कृष्ण की लेते हैं, भजन उनका करते हैं और उनका भजन करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको पता हो कि नहीं, शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर रा बोलता है तो मैं सोचता हूं कि क्या वो माँ भी बोलेगा, अर्थात क्या राम बोलेगा। तो यानी कि भगवान शिव, जो कोई व्यक्ति श्री राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, नामोच्चारण करता है, उससे वो अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस चीज को आप चौथे स्कंद श्रीमद भागवतम के 24वें अध्याय में देख लीजिएगा, शिव जी स्वयं बोलते हैं इस बात को। ओके, वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। अश्वमूर्ध, वे अश्वमूर्ध हैं, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा रस की दृष्टि से कि भगवान से हम भगवान के बराबर नहीं हो सकते लेकिन भगवान से बड़े हो सकते हैं। बड़े अर्थात जो व्यक्ति भगवान के प्रति वात्सल्य भाव को उत्पन्न कर लेता है तो भगवान उसके बेटे बनने के लिए तैयार रहते हैं। कितनी बार हम शास्त्रों में देखते हैं बहुत से भक्तों के संग भगवान ऐसा किया है, माता देवाहुति, कर्दमनि, अदिति, कश्यप मनि, ऐसे करके। तो ये खेल लेकिन रस की दृष्टि से, रस के आदान प्रदान के लिए भगवान स्वीकार कर लेते हैं लेकिन तत्व की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति भगवान से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, ना उनके बराबर हो सकता है। इसीलिए कभी कभी भक्त लोग जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आपके समान पुत्र चाहिए तो भगवान ये सोचते हैं भाई मेरे समान तो कोई है नहीं, तो फिर तो मुझको आना ही पड़ेगा। फिर भगवान ऐसे भक्तों के बेटे बनते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो मानते हैं वे पाखंडी हो जाते हैं, किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है
तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों भगवान को हम के ऐश्वर्य को समझना चाहिए? जब तक हम ही समझेंगे नहीं कि भगवान का अर्थ क्या है, आंख मूंद करके किसी भी बाबा, किसी भी देवता, किसी भी तथाकथित भगवान को हम भगवान स्वीकार कर लेंगे। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि सच्चा सोना क्या है और आर्टिफिशियल सोना क्या है, तो वह आर्टिफिशियल सोने को सच्चा सोना मान बैठेगा। तो इसी प्रकार से भगवान, भग मतलब होता है ऐश्वर्यवान, और भगवान का अर्थ है जिनमें सारे ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि जो जो महान महान ऐश्वर्यशाली लोग भी हैं, विभूतियां हैं, वो भगवान कह रहे हैं उनका अंश मात्र है। तो जब इस चीज को बार बार सुनते हैं तो भगवान में हमारा जो चित्त है स्थिर हो जाता है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो वस्तु कोई दूसरा देवता दे सकता है वो कृष्ण नहीं दे सकते। और अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको आपको आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ओके। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। ये तो हमने आपको समझा दिया कि परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह हैं। अतः ये भी इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोग कहते हैं ईश्वर भगवान सब जगह है, लेकिन वो ईश्वर है कौन? वो है कृष्ण। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मांड में है और हर परमाणु के बीच में है और परमाणु के अंदर भी है भगवान। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, मतलब कन्विंस्ड हैं कि कृष्ण की सेवा करनी और कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत होए, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति लगातार भगवान की सेवा में रहता है वो कभी भी भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं रहता। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। आप इसको वापस रिवाइज कर लीजिएगा। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जैसे मैं अभी भगवद गीता के ऊपर कुछ बोल रहा हूं, तो मैं भगवान का संग प्राप्त कर रहा हूं, भगवद गीता को छू रहा हूं, भगवद गीता के बारे में पढ़ रहा हूं, बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये भक्ति है और इस भक्ति के द्वारा हमें भगवत संग प्राप्त होता है और इसके द्वारा जीव क्रमशः मुक्त होता चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जैसे आप इस प्रवचन को सुनेंगे या फिर जो टेक्स्ट भेजा जाएगा उसको पढ़ेंगे तो आप भक्ति कर रहे हैं और इसके द्वारा भगवान का संपर्क आपको प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल जो बातें भगवान ने बताई हैं उसको यथावत प्रस्तुत करना ये भक्ति है। कोई इसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए और इसके द्वारा भगवत संपर्क प्राप्त होता है। जैसे एक पोस्टमैन चेक लाके देता है आपको आपके पिताजी के द्वारा, जिन्होंने 1 लाख रुपए का चेक भेजा है, तो वो खुद उसके पास को 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन उसमें उसकी योग्यता यही है कि जैसा चेक था वैसा ही आपको लाके दिया गया है, उसमें कोई साइन नहीं करता। उसी प्रकार से हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा कर सकते हैं, आप सब लोग जो इन प्रवचनों को सुनते हैं, कि इनको सीखें और दूसरों को बताने का प्रयास करें जैसा आपने सुना है, कोई परिवर्तन ना करें, तो लोगों पे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम लोग बहुत साधारण व्यक्ति हैं लेकिन हमारे पास ज्ञान बहुत बड़ा है और शक्ति बहुत बड़ी है दूसरों पे कृपा करने की, यदि हम भगवद गीता के ज्ञान को यथावत प्रस्तुत करते हैं। ओके। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यक्तिलेशा सूर्याद्या भवन्त्य उग्र तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं सकृष्णो दशमे अर्चते। प्रबल प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु ज्वंश द्वारा होता है, अतः श्री कृष्ण पूजनीय है और श्री कृष्ण ही पूजनीय है। ठीक है, तो ये बात हमें दृढ़ता के संग स्वीकार करना चाहिए और दृढ़ता के संग हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए।